اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، ولاہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، صلوات پر محمد علیہ وسلم. حضرتانہ نے امام قیصر باغ ممبئی کی 1444 ہجرہ کی یہ پہلی محرم کی مجلس ہے. دن گزرنے کے بعد شب دو محرم ہے. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے. اتنا بڑا مجمع قیصر باغ میں دو محرم کو، پہلی محرم کو میرے سامنے ہے. میں نے مجلس کا آغاز موسٹ ریکمینڈیڈ سورہ، سورہ مبارک رحمان، جو بڑا ریکمینڈیڈ ہے کہ یہ سورہ کی تلاوت کرو. 114 سوروں میں قرآن کے، یہ ایک سورہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا. فوے ایالہ رب کما تک زبان، کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کا احسان اتنا ہے کہ 24 آورس اگر ہم اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اس کا شکر ادا کریں تو اس کا شکر کم نہیں ہوگا. ہی ہیز گیون ایوری تھنگ ٹو اس، ہر چیز اس کو دی. اسی لیے حکم ہے کہ جتنا تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. آلویز اللہ کا شکر ادا کرو. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اگر کوئی کینڈی دے تو تم اس کو تھینک یو بولو. بہت اچھی بات ہے. میرا یوتھ میرے سامنے ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی ایون کینڈی بھی دے تم کو تو اس کو تھینک یو بولو. دوستو تم بچوں کو یہ سکھا رہے کہ بندے کا شکر ادا کرو، ضرور سکھاؤ. سب سے پہلے اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے جو شکر ادا کرنا ہے وہ اس کا شکر ہے، خالق کائنات کا. روز صبح اٹھ کر اگر ایک دفعہ تمہارا بچہ سجدہ کر لے، معصوم بچے، نماز واجب نہیں ہے ان پر، کچھ بھی نہیں ہے واجب، یہ معصوم کا طریقہ ہے. روزانہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ممبئی میں تمہارے ایشوز دور ہو، تمہاری پریشانی دور ہو، تمہارے گھر میں رحمتیں آئیں، پہلی محرم کی مجلس میں قیصر باغ میں بول رہا ہوں، یو ٹرائی اینڈ یو ول سی دا ریزلٹ. تم ٹرائی تو کرو، اس کے بعد دیکھو اس کا ریزلٹ کیا ہے. معصوم بچے کو صبح میں ماں جب اٹھاتی ہے تو ایک جملہ بولو کہ بیٹا جس سے اللہ تیرا شکر. عادت ہوگی جب کھانا پہ بیٹھتے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ممبئی میں تو باپ ہیڈ آف دی فیملی ہے، ماں اور باپ. بچوں کو بولنا جب تمہارے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ یا سفرے پہ یا دسترخوان پہ نیچے بیٹھتے ہیں، بیفور یو اسٹارٹ دا فوڈ، تم اپنا کھانا شروع کرنے سے پہلے یہ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کا شعر، یہ چوتھے امام کا طریقہ ہے. ہمارے پاس نعمت آئے گی، کھانا کھائیں گے، یاد رہے گا تو شکر ادا کریں گے. مولا کی زندگی کیا ہے، معصومین کی زندگی کیا ہے، امام علی کی زندگی کیا ہے. امام علی کا یہ عادت کہ نعمت سامنے آئے شکر ادا کرو. چوتھے امام کھانے کو دیکھ کر فوراً سجدے میں چلے آتے تھے. سید الساجدین، میں یہ نہیں بول رہا سجدے میں جاؤ، میں اتنا بول رہا کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ तो बॉम्बे में तुम्हारे सारे परेशानियों को अगर दूर करना चाहते, ये अबुल बिगरामी नहीं बोल रहा, ये मासूम इमाम बोल रहे कि जब तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारी नेमतों को बढ़ा देगा। मिसाल के तौर पे तुमको इतना इंक्रीमेंट मिलना है, इतना पैसा आना है, लेकिन जब तुम शुक्र अदा करते जाओगे अल्लाह 70 गुना आगे बढ़ा देगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना बोलना है सुबह उठ के कि अल्लाह तेरा शुक्र है। ये एक जुमला तो बोल सकते हैं ना, एक जुमले में टाइम कितना जा रहा। अगर तुम्हारा बच्चा शुक्र अदा करना शुरू कर दे तो दोस्तों मासूम का शुक्र जल्दी होगा कबूल। तुम्हारा बच्चा मासूम है, वो शुक्र अदा करेगा, दिन तुम्हारा पीसफुल गुजरेगा। अगर दिन में कोई परेशानी आने वाली है तो वो भी दूर हो जाएगी। कोई मुसीबत आने वाली है मुझे नहीं मालूम, पूरा दिन है, बीमारी भी आ सकती, कोई परेशानी भी हो सकती, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो सकता, एनीथिंग कैन हैपन। तो उस वक्त तुम अगर शुक्र अदा करोगे तो आने वाली बलाएं मुसीबतें डलती हैं। अल्लाह का सबसे ज्यादा यह मकसद है कि बंदा उसका शुक्र अदा करे। हम बंदों का तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बंदों का करना, लेकिन सबसे पहले उस अल्लाह का शुक्र अदा करोगे जिसने तुमको पैदा किया, जिसने नेमतें दी। उसके बाद मासूमीन का अल्लाह का यह शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे दिल में विलायत अमीर अल मोमिनीन दी, मेरे मौला की मोहब्बत आई, आजादारी हुसैन आई हमारे पास। ये सबसे पहले ये दूसरा शुक्र है जो आपको करना है। ये बच्चों को सिखा, मुहर्रम आया, मुहर्रम के पैगाम में से एक पैगाम है ये कि शुक्र अदा करो कि अल्लाह तूने मुहर्रम हमको दिया। आप इंसाफ से बोलो, इतना बड़ा मजमा खैसरबाग में है, आपने नियत की खैसरबाग में जाके मस्जिद सुनूंगा, घर से चले, रास्ते में खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, आ सकते थे मस्जिद से? नहीं आ सकते, और पेट अपसेट हो गया, सर में दर्द हो गया, कुछ भी हो सकता, नहीं आ सकते थे ना मजलिस। अगर तुम आए हो फर्श अज़ा में तो ये शुक्र अदा करो कि अल्लाह सेहत के साथ तुमने फर्श अज़ा नसीब कर दिया। खामोश मत सुनो, जो हकीकत है वो बयान कर रहा हूं। सेहत के साथ तुमने मुझे मौका दिया कि मैं मजलिस हुसैन में जा सका। उसके बाद ये सारे शुक्र अदा करने के बाद मैं जल्दी जल्दी जा रहा, मुझे कहीं और जाना है, एक मंजिल तक आपको लेके जाना है। ये शुक्र अदा करने के बाद तीसरा शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसे माँ बाप के घर में पैदा किया जहाँ से अली की मोहब्बत आई। कभी करते हो? कभी माँ का शुक्र अदा करते हो? कभी अपने बाप का शुक्र अदा करते हो? कभी ये कहते हो कि अल्लाह ये माँ बाप, इसलिए कि ये भी छठे इमाम का इशारा है कि जब भी हमारी मोहब्बत किसी के दिल में देखो, बॉम्बे में आपने तो ये बड़ा आजादार है, ये बड़ा मातमदार है, ये बड़ा नोहे पढ़ता है, ये मजलिसों में आता है, इमाम ने कहा जब भी किसी के दिल में हमारी मोहब्बत देखो उसकी माँ के हक में दुआ कि माँ ने पाकीज़ा तरीके से तुमको दुनिया में लाया कि जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में मोहब्बत हुसैन आई, इमाम अली की मोहब्बत आई। आज की मजलिस के बाद जिनके माँ बाप जिंदा हैं, जब तुम अपने घरों को जाओ तो माँ का माता चूमो, सबको बोल रहा बूढ़ी माँ है, जवान माँ जो भी है, जाके माँ का माता चूम के बोलो अम्मा आज मैंने इतनी मजलिसें तेरी वजह से की। क्या बोल रहा, इतने खामोश क्यों हो गए? शुक्र अदा करो माँ का कि माँ पाक थी तो हुसैन की मोहब्बत आई, माँ पाक थी तो तुम फर्शे अज़ा पे आए। अगर माँ पाकीज़ा तरीके से तुमको रेस नहीं करती बॉम्बे में, परवरिश नहीं करती, हलाल रिस्क नहीं खिलाती तो तुम आते फर्शे अज़ा पे? तुम कहीं और जाते? पहले जाके आज माँ का शुक्र अदा करो कि पहली मुहर्रम आज हमने मजलिसें किए, जाके माँ को बोलो माँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई डिड दिस, बिकॉज ऑफ यू। दोस्तों हजारों लोग हैं, लेकिन वो माएं कि जिन्होंने अपने बच्चों को हुसैन की मोहब्बत जिनके दिलों में डाली, वो तुम्हारी मां है। याद रखो, आज जाके मां का शुक्र जरूर करना। कुछ मत करो, मां बैठी हुई है, माथे को चूम लो या पैर को चूम लो। मां क्या, पैर चूमने से इज्जत नहीं जाती, इज्जत बढ़ती है। जब जाना मां के पास तो किसी को साथ लेके जाना। समझे मैं किधर इशारा है मेरा? अगर शादी हो गई है तो अपनी बीवी को साथ लेके जाना और बताओ ये तुम्हारी माँ है। बस दोस्तों, ये माँ बाप का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, मासूमीन का शुक्र कि इनकी वजह से आज जिक्र हुसैन हम करने लगे। इनका एहसान है, सबसे पहले एहसान अल्लाह का, उसके बाद मासूमीन का कि जिन्होंने इस्लाम पे एहसान किया, हमारे ऊपर एहसान किया। मैंने अभी एक जुमला बोला, इस्लाम पे एहसान करने वाला पहला शख्स कौन था जिसके एहसान को अल्लाह ने माना है? क्यों समझ में आई बात? इस्लाम पे सबसे बड़ा एहसान किसने किया इस्लाम आने के बाद? एक ऐसी शख्सियत है कि जो 12 इमामों का बाप है। समझे वो कौन है?
खालिद कुल्ले वालिद इब्ने अबी तालिब नारा हैदरी।
पहला वो शख्स, आज उसके बारे में सुनो। मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैं जनाब अबू तालिब के बारे में पढ़ूं। खैर, बात के मजालिस, दो शख्सियतें हैं कि जिन पे पढ़ने के लिए प्रेशर किया गया कि आज के दौर का तकाजा कि जनाब अबू तालिब के बारे में पढ़ो। दोस्तों, ईमान अबू तालिब कोई पढ़ सकता? ईमान अबू तालिब पे कोई पढ़ सकता? कौन पढ़ेगा? उसके ईमान के बारे में क्या पूछ रहे यार, जो कुल्ले ईमान का बाप है। कौन पढ़ सकता जनाब अबू तालिब के ईमान पे? पढ़ने वाला जाहिल है। उसके ईमान जो अली का बाप हो, उसके ईमान के बारे में हम क्या बोले? अबू तालिब उस पर्सनालिटी का नाम है। रोजाना जनाब अबू तालिब पर सलाम करा, सलाम अलैका या अबू तालिब, जनाब अबू तालिब। इमाम अली से पूछा गया कि मौला आपके बाबा के बारे में क्या ख्याल है आपका? ईमान है अबू तालिब के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उस वक्त मेरे मौला का जुमला है, तुम मेरे बाप के बारे में पूछता है? मेरा बाप चाहे रोजे मैशर पूरे मैशर को बख्शवा दे। मेरा बाप का वो रोल है पूरे मैशर को। इमाम अली बोलते कि मैं पूरा मैशर को मेरा बाप अकेला बख्शवा सकता। अब अल्लाह ने अबू तालिब को वो अथॉरिटी दी, लेकिन अफसोस आज तारीख में, हिस्ट्री में जनाब अबू तालिब के बारे में सबसे कम रिवायतें। क्यों? सब लिख रहे हमारी किताबें नहीं, आम किताबों में, कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा ही नहीं कलमा। आप हिस्ट्री से साबित भी नहीं कर सकते कि कलमा अबू तालिब ने पढ़ा। कुवैत में जब मैं था तो मुझसे वहां के बहुत बड़े मौलाना ने, मुसलमानों के, कहा कि मौलाना आप ये साबित कर सकते कि जनाब अबू तालिब ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा? मैंने कहा हाँ नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि आप भी एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? मैंने कहा वो बहुत बिजी थे। यार गौर से सुनो, बोलते हुए सुनो। मैंने कहा ही वॉज वेरी बिजी, उन लोगों ने कहा अच्छा बिजी इतने थे कि कलमा नहीं पढ़ सके, क्या बिजी थे मक्के में क्यों नहीं पढ़ा। मैंने कहा अबू तालिब ने कलमा पढ़ा नहीं, कलमा पढ़वाया। कलमा पढ़वाया माइनस, मेरे जुमले गौर से सुनो, माइनस अबू तालिब, इस्लाम वो लिफाफा है जिसमें खतना। एनवेलप की वैल्यू किससे होती, लिफाफे की वैल्यू किससे होती, खत से होती। मिसाल के तौर पे अगर कोई लिफाफा रोड पे मिल जाए आपको पुराना, उसके अंदर आप 1,00,000 रुपए का चेक रख दो, लिफाफे की वैल्यू कितनी बढ़ गई। सीने से लगा के रखेंगे, छुपा छुपा के रखेंगे, इसके अंदर 100,000 रुपीज का चेक है। लिफाफे की वैल्यू खत से होती है, वरना लिफाफा गार्बेज में नजर आता, कचरे में नजर आता। अगर अबू तालिब नहीं होते तो इस्लाम वो लिफाफा है कि जिसमें खत हो, ये वो चीज है, वो पर्सनैलिटी का नाम है। कि अबू तालिब ने कलमा पढ़वाया, अगर अबू तालिब नहीं होते तो मक्के में हिस्ट्री बताऊंगा आज और कल दो दिन जनाब अबू तालिब के ऊपर, जितनी देर में बस टाइम है 2-3 दिन भी लग सकते। जनाब अबू तालिब दो मोसिना ने इस्लाम है, इस एक हमारी माँ बीबी खदीजत अल कुबरा और एक हमारा बाप अबू तालिब। सब बात पढ़ ले वहां दोस्तों, अगर ये दोनों नहीं होते तो इस्लाम आज कलमा नहीं होता। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो रहा तो ये दोनों के एहसान से हो रहा। मक्के में इस्लाम पहली मंजिल पर खत्म हो जाता अगर ये दो पर्सन, आज इंट्रोडक्शन है सिर्फ, अभी तो चलेगी आज पहली मुहर्रम की मजलिस, अगर ये नहीं होते तो इस्लाम बिल्कुल जीरो हो जाता। अबू तालिब वो पर्सनैलिटी है कि जिसका एहसान अल्लाह माने, जिसका एहसान अल्लाह माने उसका नाम अबू तालिब है। आपका मेरा एहसान नहीं, काफिर के एहसान को कोई नहीं मानता। अब मैं आपको बताऊं दो तारीख के वाकयात, जब नबी आदम पैदा हुए, प्लीज 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 गौर से सुनना। नबी आदम पैदा हुए आसमान में, जन्नत में जहां भी पैदा हुए थे, जब उनकी पूरी खिलकत हो गई, पुतले से रूह आ गई, अल्लाह ने कह दिया नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं रूह फूंकूं तो तुम सजदा करना, तो सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस। गौर से सुनो, जब जनाब आदम खिलकत आ गई तो रूह जब आई आदम के जिस्म में, रूह आई कैसे आई, सर से दाखिल उनका पुतला बना, मेरी तरफ देखो पुतला बना हुआ था। सबसे पहले जो अल्लाह ने कहा नफख्तु फीहि मिन रूही, मैं इसमें रूह फूकूंगा तो तुम लोग सजदा करना, जैसे ही रूह सर से एंटर हुई यहां तक आई गर्दन तक, आदम ने आंखों को खोला, हमारा बाप आदम पहला इंसान बन रहा, आदम ने आंखों को खोला, आंखों मेरी तरफ देखो, आंखों को खोला और खोल के अपने सर को ऐसे किया तो अर्शे इलाही को देखा, कानों में मलाइका की तस्बीह की आवाज आई, कोई सुब्हुन खुदूसुन कर रहा था, कोई या ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा था, सब पहली आवाज जो कानों में आई। इसीलिए हम अपने बच्चों को दुनिया में आने के बाद अजान और अखामत कहते कि जो पहली आवाज जाए वो अल्लाह की आवाज है, आवाज है। तो आदम मेरी तरफ देखो, यहां तक रूह आई है आदम की, आदम के कानों में मलाइका की तस्बीह की आवाज, आदम ने अपने सर को ऐसे किया, किया तो अर्शे इलाही क्या देख, अर्शे इलाही पे लिखा हुआ देखा, अर्शे इलाही पे कुछ लिखा हुआ देखा, क्या लिखा हुआ था अर्शे इलाही पर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वहदानियत पूरा कलमा है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद आदम ने देखा लिखा हुआ है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं आज पहली मजलिस में प्लीज आगे आ जाओ, बाहर बहुत लोग खड़े हुए हैं, पीछे वालों को बोलो आगे हटो, कैसर बाग यहाँ आ गया, आ गया पीछे से, आ गया पीछे से, आ गया आ गया यार। मुझे एक अच्छी बात लगी, मैं पूरी दुनिया में पढ़ता हूँ मजे से, बॉम्बे के यूथ की आवाज बड़ी भारी है। उसके बाद लिखा हुआ है अशहदो अन्ना अली इब्ने अबू तालिब वली अल्लाह। अगर काफिर होते तो अल्लाह अर्श पे नाम नहीं लिखता। टाइम नहीं है, यू नो 12:15 बजे उतर जाना है मेरे, मुझे पढ़ने दो। आप मुझे मालूम है आप लोग 6 के बाद फिर पढ़ने नहीं देंगे, नहीं खैसर बाग वालों, यू हैव टू चेक योर सेल्फ। अगर ये गारंटी लेते हैं कि 9 तक पढ़ने देंगे तो फिर पढ़ते रहो, नारे लगा लो, कोई विषय नहीं है। किसी काफिर का नाम नहीं लिखता। मैं अपनी किताबों से नहीं पढ़ रहा, खसस अंबिया की रिवायत पढ़ रहा, खसस अंबिया अहले सुन्नत की किताब है, वो लिखते कि अर्श इलाही पर मेरे मौला का नाम अली इब्ने अबू तालिब है। तो तुम तसव्वुर करो, अबू तालिब का नाम अर्श पर है, फिर वो काफिर कैसा। अब एक और बात बताओ, एक और रिवायत बताओ, मैं जो सोच के आया था पढ़ी नहीं सक रहा, वक्त निकल गया। एक और रिवाज बता दो, अल्लाह हम सब को नजफ़े अशरफ की ज़ियारत नसीब करे, मेरे मौला की ज़ियारत और करबला की अरबईन की ज़ियारत के लिए बाबा से बरम सलाम पढ़ो। नारे मत लगाओ, नारे मत लगाओ, टाइम नहीं ना, पीठ को 10-12-15 मिनट रह गए। नजफ़े अशरफ में जब आप जाते एंटर होते, कभी मेरे साथ चलो, मैं फ्री लेके जाता हूँ, चलना। अब मजलिस के बाद खैसर बाग में लाइन नहीं लगाना, मैं लेके फ्री नहीं जाता, मैं लीड करता ग्रुप को। बॉम्बे का एक ग्रुप है अल मुंतज़र, लंदन का ग्रुप है, अमेरिका का ग्रुप है। इस साल इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा मौला चाहे तो अरबईन में दाऊद इस्लाम के ग्रुप को लीड कर रहा था। कभी मेरे साथ चलो तो मैं बताऊं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। मौला का रोज़ा है, गोल्डन टोम है, गोल्डन टोम है, मैं अबू तालिब ही पे अभी बताऊं, गोल्डन टोम सोने की गुंबद है मौला की, शानदार, बादशाहों का बादशाह है, किंग ऑफ किंग्स है, किंग ऑफ किंग्स है मेरा मौला। और 2 मीनारे हैं, اگر آپ وادی السلام کی طرف سے آئے تو مولا کا روضہ ہے اور اطراف میں ایک سے ایک بڑی بڑی پرسنالٹی میں آرام کر رہی ہے. جو پہلی مینار مولا علی کے روضے کی اس کے نیچے 700 صدی کا ایک ایسا علی والا دفن ہے کہ جس کا نام علامہ حلی ہے. اور دوسری مینار جو ہے اس کے اندر 1000 سال پرانا یعنی 400 سال پرانا 1000 صدی کا مقدس ہے اردبیلی. دوستو امام علی کے روضہ خبر کے اطراف میں ایسی ایسی ہستیاں ہیں, ایسی ایسی پرسنالٹیز دفن ہیں کہ اگر یہ لوگ باہر رہتے تو ہر لحد سے, ہر خبر سے, ہر گریو سے معجزے ظاہر ہوتے. لیکن سورج کے سامنے ستارے کہاں چلتے ہیں؟ میرا مولا سورج ہے, یہ سب ستارے ہیں. تو امام علی کی جو لحد ہے, اب میری طرف دیکھو, اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا ہوں. جناب مولا علی کی لحد ہے اور مولا کی رائٹ سائڈ کے اوپر نبی آدم دفن ہے. پہلا نبی ہمارا باپ آدم رائٹ سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ پہ جناب نوح جن کا طوفان آیا تھا, دوسرا بڑا نبی, پہلا اولی الازم پیغمبر, وہ دفن ہے. ایک سائڈ پہ آدم ہے, ایک سائڈ پہ نوح ہے, بیچ میں میرا مولا ہے. اور جب مولا کی شہادت ہوئی تھی تو مولا نے مولا حسن سے وصیت کی تھی. آپ جانتے ہیں کہ مولا کا گھر کوفے میں, کوفے سے آل دا وے نجف اشرف کو مولا کا تابوت آیا تھا, اتنی دور ہے. آج آدھا پون گھنٹہ لگ جاتا کار میں, اس زمانے میں اونٹ پہ آنا ہے گھنٹوں لگتے تھے. لیکن عجائبات خدا بندی کا تابوت تھا. نہیں سمجھا یہ جملہ؟ اللہ کی حجت کا تابوت تھا تو پہنچا. مولا کے گھر سے نجف اشرف جب یہ تابوت آیا تو مولا علی نے امام حسن علیہ السلام سے وصیت کی تھی کہ بیٹا مجھے نجف اشرف پہ لے جا کے دفن کرنا. مولا حسن کو تو سب معلوم ہے, یہ ہمارے لیے جب وہاں دفن کرنا, وہاں پہنچنا تو وہاں ایک خبر تیار ملے گی, گریو تیار ملے گی, لحد تیار رہے گی, پتھر ہٹانا نیچے میری لحد تیار رہے گی, مجھے وہاں دفن کر لینا. مولا حسن نے ویسے کیا. آئے, اب سنو, آئے آ کے جب پتھر ہٹایا, امام حسن کو سب معلوم ہے. میں حیات الخلوب علامہ مجلسی کی کتاب سے پڑھ رہا, قصص الانبیاء سے پڑھ رہا, اہل سنت کی کتاب, تاریخ امیر المومنین یہ بھی اہل سنت کی, بائیوگرافی آف علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ بھی اہل سنت کی کتاب. لکھا ہوا ہے, انہوں نے لکھا کہ جب مولا حسن نے پتھر ہٹایا تو مولا کی لحد بالکل تیار تھی اور وہاں پہ ایک پلیٹ لگی ہوئی تھی, تختی جس کو بولتے, ایک پلیٹ لگی ہوئی تھی, ایک تختی, اور وہ ہیبرو زبان میں تھی. کیا لکھا ہوا تھا اس پہ؟ یہ مولا علی کی جو خبر تیار تھی یہ کس نے تیار کی تھی؟ یہ جناب نوح نے تیار کی تھی. نوح نبی کا پیریڈ اور امام علی کا, پلیز غور سے سنو, نوح نبی کا پیریڈ اور امام علی کا پیریڈ جو ہے وہ لگ بھگ 20,000 سال پرانا ہے, لگ بھگ 20,000 یا 18,000 ایئرز پہلے کا واقعہ ہے. علی کے زمانے سے نوح نبی ابتدائی زمانے کے, نبی آدم کے بعد سب سے بڑا نبی جو آیا اولی الازم, پہلا اولی الازم وہ نوح. تو نبی نوح نے طوفان سے پہلے یہ لحد بنائی تھی. کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا کہ یہ لحد, یہ گریو نوح نبی نے اب طوفان آنے سے 500 سال پہلے بنائی, اور یہ لحد آخری نبی محمد مصطفیٰ کے, ٹائم بتاؤ یار, محمد مصطفیٰ کے جانشین, وارث, سکسیسر علی ابن ابو طالب کی ہے. انہیں نو کو بھی معلوم تھا کہ ابو طالب کون ہے. دوستو اور ایک بات اس میں واضح ہوئی, آپ نہیں سمجھے, نوح نبی نے 500 برس 18,000 سال پہلے یہ اعلان کر دیا کہ آخری نبی کا جو وارث ہے وہ علی ہے. غدیر سے 18,000 سال پہلے وہ تختی لگی ہوئی تھی اور اسی میں میرے مولا کی لحد بنی, اسی میں میری مولا کی. آج بھی جب آپ جاتے ہیں तो इमाम अली की जरी में ये तीनों दो नबी हैं, आदम और नूह, बीच में मेरा मौला है। और मैं बात क्या रोक के बोलूं, सारे नबी, इब्राहिम बड़े नबी है, मूसा बड़े नबी, अल्लाह डायरेक्ट बात कर रहा, ईसा रूहुल्लाह बड़े नबी है, सारे नबी एक तरफ, जो सादत, जो फजीलत आदम और नू को मिली वो किसी को नहीं मिली। नहीं समझे, कोई नबी अली के करीब नहीं आए। आदम और नू की जो फजीलत मिली कि उनको अली ने अपने पहलू में रखा, कितनी बड़ी फजीलत। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर तुम्हारा ईमान अच्छा है, तुम्हारे अमाल अच्छे हैं, तुम बॉम्बे में दफन हो, अली अपने पास बुला लेगा अमल करने से। तो जनाब अबू तालिब उस पर्सनालिटी के नाम है कि शुरू से उनका नाम रखा गया, नाम लिया गया। देखिए दोस्तों, बेटा अपने बाप का नाम उसी वक्त लेता कि जब बाप का कोई स्टेटस रहता। बाप अगर अच्छा हो तो बेटा ले ना, जिसके बाप का पता ही नहीं वो क्या ले। नहीं, अगर मेरा बाप उस काबिल वैसा है तो मैं नाम लूंगा ना बाप का, वरना जो जिसका बाप गुमनाम है, अरे जो खुद गुमनाम थे बाद में नाम आ गया। नहीं तो अबू तालिब इमाम अली का अजीब शेयर था कि हर वक्त अपने बाप के नाम से लेता था। अब एक बात और बोल के मजलिस को तमाम कर रहा, इसलिए कि मैं इनकम्प्लीट मजलिस छोड़ा, कल इसको कंटिन्यू करूंगा। जनाब अबू तालिब से एक यहूदी आलिम था, बहुत बड़ा राहिब जिसको बोलते, जंगे खैबर का बड़ा मशहूर वाकया, जंगी पड़, जहाँ पर भी जनाब अबू तालिब की फजीलत है वो इसलिए बयान कर रहा। जब आपने हमेशा सुना, एक शेर भी है कि पत्थर पे अलम गाड़ा किसने, बड़ा मशहूर मौला के लिए शेर। इमाम अली ने जब खैबर को फतह करने गए थे तो अलम को पत्थर पे ऐसा नफ्स कर दिया था, पत्थर पे मारा तो अंदर हो गया, जैसा मिट्टी में गाड़ते वैसे पत्थर पे गाड़ा। जैसे अलम अली ने पत्थर पे गाड़ा, एक यहूदी राहिब था, 103 साल उसका सिन था, 103 ईयर्स ओल्ड था, बूढ़ा था वो, इमाम अली को जवान, इमाम अली को जानता नहीं था। वो करीब आया, करीब आके कहा कि ए जवान, ए जवान, मेरे पास सितारों का इल्म है, तूने ये जो अलम पत्थर पे गाड़ा नहीं, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं। इस वक्त आसमान पे एक सितारा ऐसा है कि अगर उसके वो 1000 साल के बाद निकलता है और आसमान में ऐसा गश्त करता है, उसके नीचे जो भी सख्त से सख्त चीज लोहा भी है तो मोम हो जाएगी जब तक वो सितारे के नीचे रहेगा। तो मेरा इल्म ये बता रहा, मेरा इल्म और मेरा कैलकुलेशन ये बता रहा कि वो सितारा इस वक्त आसमान के ऊपर है जहां तेरा तूने पत्थर पे अलम को गाड़ा। अब अली को कोई चैलेंज करे, मौला ने अलम को उठा लिया, उठा के आगे बढ़े, पलट कर उससे पूछा, अब तेरा सितारा क्या बोल रहा। उसने कहा वो वही। मौला चंद कदम चल के मुड़े, फिर चंद कदम चल के फिर मुड़े, तो उसने पीछे से पुकार के कहा कि ए जवान जरा ठहर जा, अजीब मैं मंजर देख रहा, जहां जहां तू चल रहा सितारा पीछे पीछे चल रहा। तू है कौन कि जिगर जिगर तू मोड़ा सितारा पीछे पीछे मोड़ा। मैं हमेशा सबको यही एडवाइस करता, जब मेरे पास व्हाट्सएप मैसेजेस पूरी दुनिया से आते हैं, फोन आते हैं कि मौलाना एक लड़की पैदा हुई, लड़का पैदा हुआ, 5:18 पे आया, जरा कोई सितारों को देख के बताइए कि इस बच्चे का सितारा क्या बोल रहा है। मैंने कहा सुनो, मुझे कोई सितारों का इल्म नहीं, ना तुम सितारों के इल्म को जानने की कोशिश करो, उनसे क्यों नहीं पूछते जिसके दरवाजों पे सितारा होता है। ये सितारों के इल्म को मत रखो, ये इल्म बिल्कुल गलत है। तुम उनसे पूछो कि जिनके दर पे सितारा उतरा, बीबी से पूछो, मौला मैंने कहा यार अगर 5 बज के पैदा हुआ दिन क्या था, जुमा था, लड़का है, मैंने कहा मेहदी नाम रखो, इमाम के नाम पे नाम रखो, इमाम की माओ के नाम पे लड़कियों के नाम रखो, ये ड्रामास के नाम मत रखो, समझ में आई बात, ये ड्रामास के नाम मत रखो अपने बच्चों के। अगर तुम ड्रामास के नाम रखोगे तो लड़की हो या लड़का हो वो बरकत ही नहीं होगी। अगर मासूम के नाम पे नाम रखोगे, इमामों की माओ के नाम पे नाम रखोगे तो तुम्हारे घर में बरकत होगी। तुम खुद सोचो, अगर मुंबई में तुमने अगर अपनी बेटी का नाम जहरा रखा, 24 घंटे तुम जहरा जहरा पुकार रहे, घर में कितनी बरकत है। सकीना रखा, 24 घंटे सकीना सकीना कहे, नाम का असर होगा। मैं लड़कियों को बोल रहा जो मुझे सुन रहे, ये मॉडर्न नेम्स के चक्कर में मत पड़ो, जो आज तबाही है वो उसका वन ऑफ द रीजन ये है। नाम रखो मासूम के नाम पे, उसके बाद देखोगे अता क्या होगा। तो हमेशा मैं यही एडवाइस करता, तो इस वक्त इस राहिब ने कहा कि तुम हो कौन, मौला ने कहा मेरा नाम, उसने पूछा नाम क्या, मौला ने कहा मेरा नाम अली ने भी अली ने अबू तालिब, तो उसने कहा कौन अबू तालिब, कहा सरदार मक्का, ये मदीने का वाक्य है, कहा तुम अबू तालिब के बेटे हो, अली ने कहा कि हाँ अबू तालिब का बेटा, तो कहा ये इल्म अबू तालिब के पास था या तेरे पास, सितारों का इल्म। तो दोस्तों हर जगह मौला ने जहां मौका मिला अपने बाप का नाम लिया, तारीख में तारीख में तारीख में तारीख में सिवाय अली के, सिवाय अली के कोई मुसलमान के रहबर ने अपने बाप का नाम उतना प्राउडली नहीं लिया जैसे अली ने लिया, न यजीद ने लिया, न यजीद के बाप ने लिया, क्या बोल रहा है, ना फुला 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 ने लिया, क्या बोल रहा है यार, किसी ने नहीं लिया। इसीलिए नहीं लिया कि तारीख से उनके बाप साबित ही नहीं हुए। हमारी तारीख में एक मैडम है, हमारी मैं नाम नहीं ले रहा, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं, आपके जहनों का जिम्मेदार नहीं हूं। हमारी हिस्ट्री में एक मैडम है और उस मैडम का बाप है, नाम है, लेकिन आज तक मैडम का कोई बताओ कि उस मैडम ने पब्लिकली कहा कि मैं उसकी बेटी हूं। इसके बरस मेरी मजलूम बीबी जहरा दरबार में जाके बोलती है कि मैं बिनते मोहम्मद हूं। सलवा पढ़ ले मोहम्मद वाले, बस प्लीज मेरे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 6 मिनट रह गए, मैं मसाज पे आ रहा, कल मैं तो 11 बजे आ रहा, आप अगर आ जाए मैं 11:15 पे मेंबर पे आ जाऊँ, 11:15 बजे मुझे मान जानता कि मैं 12:15 बजे छोड़ना है ट्रेन, लास्ट ट्रेन है, मैं नहीं चाहता किसी मोमिन को तकलीफ या मोमिना, प्लीज कल प्लीज बोल रहा, चंद दिन रह गए, 11:15 पे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा 11:15 बजे मिंबर पे आ गए। बर कल सुनना जनाब अबू तालिब और बीबी खदीजा पे। दोस्तों पहली मुहर्रम का दिन गुजर गया, शब आ गई, दो की शब, गरीबों का काफिला आहिस्ता आहिस्ता करबला की तरफ पहुंचा। वो गरीब जो 28 रजब को चले थे मदीने से, आहिस्ता आहिस्ता करबला की तरफ। जब मेरा दिल ये कहता है कि जब करबला की तरफ यह काफिला बढ़ता होगा तो शहजादी ज़ैनब का दिल फट जाता, मेरी मजलूम बीबी ज़हरा तड़प के रोती होगी कि हाय कितनी जल्दी ये दिल गुजर जाएंगे, मेरा ज़हरा जवाब हो गया। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, इसी तरह रोना है। अब ये दिन गिरिया के दिन है, मातम के दिन है, रोने के दिन। कसरत से मातम करो, मातम में कभी मत शर्माओ, जितना मातम करना है मातम करो। मातम जालिम के मुंह पे तमाचा है तुम्हारा। दोस्तों उस गरीब का मातम, उस गरीब का जिक्र कि जिसको भूखा और प्यासा ज़िबा कर दिया। काफिला आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहा, कल मैं पढ़ूंगा लेकिन आज एक ऐसे शहीद का जिक्र करूँ, एक ऐसे मजलूम का जिक्र करूँ कि जो हुसैन का सफीर था। आप समझ गए बड़ा हक है मुस्लिम इब्ने अली इब्ने अबू तालिब का। जब मौला हुसैन का सफीर जनाब मुस्लिम के बारे में ये है कि आपका चेहरा जो था वो शबीह पैगंबर थे, ये पहले शबीह पैगंबर है। अली अकबर बाद में आए, मुस्लिम की एज 28 ईयर्स की थी जब आप शहीद हुए, और आपकी आवाज़ बिल्कुल मेरे मौला अली की आवाज़ से मुशाबे थी। इसीलिए इमाम हुसैन ने मुस्लिम को कूफा भेजा था कि देख लो हमारे पास पैगंबर की शबी भी है, अली की शबी। लेकिन ये ऐसा गरीब, इमाम हुसैन का ऐसा ट्रस्टेड आदमी थे, इमाम हुसैन इतना भरोसा करते थे मुस्लिम पे कि जो खत लिखा था उसमें ये लिखा था कूफियों के नाम पे कि मैं अपने सफीर को भेज रहा, इसके हाथ पे बैत करना ऐसा है जैसे तुमने मेरे हाथ। मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन इन इमाम हुसैन कंपनी, बहुत बहादुर थे। जब कूफे में आए, मैं चाहता था डिटेल में पढ़ूं, नहीं पढ़ सक रहा, वक्त निकल गया। जब आए हज़ारों लोगों ने बैत की, एक वक्त ऐसा आया गरीब कूफा के ऊपर कि नमाज पढ़ के पलट के देखते हैं कि पूरी मस्जिद खाली हो गई। अब जाए तो कहाँ जाए अखील का बेटा, रात का अंधेरा, चलते चलते घर के पास गली में जाके ठहर गए। उस घर की जो मालिक थी वो औरत अपने बच्चों की तलाश में बाहर निकली तो देखा कि एक हसीन और खूबसूरत जवान, शरीफ जवान सर को झुका के खड़ा हुआ। तो उस मोमिना ने कहा कि ऐ शख्स ज़माना पुराशोभ है, अपने घर क्यों नहीं चला जाता। मुस्लिम ने अजीब जवाब दिया, सर को झुका के कहा इसका कोई घर ना हो। आज ऐसा फुर्सा देना कि हुसैन के दिल को सुकून। आज अखील आपको दुआ दे, मौला हुसैन दुआ दे, कहा कि जिसका कोई घर ना हो वो कहाँ जाए। उस मोमिना ने कहा चेहरे से तो बड़े शरीफ मालूम होते, कहाँ के रहने वाले। तो मुस्लिम ने कहा कि मैं मदीने मुनव्वरा का रहने वाला, मदीने का नाम सुना हुसैन याद आ गया। फौरन दूसरा सवाल ये किया कि ये बताइए मदीने में कहाँ रहे थे। जैसे ही कहा मदीने में कहाँ रहे थे तो मुस्लिम ने कहा मैं महल बनी हाशिम में रहता हूँ। ये मोमिना है, तड़प गई तड़प गई, हाथों को जोड़ के कहा आपका नाम क्या है। कहा मेरा नाम मुस्लिम इब्ने अली इब्ने अबू तालिब है। वो कहने लगी आका आप घर के बाहर क्यों ठहरे, घर के अंदर आए। घर में गए, जो कुछ रोटी खाना था वो रोटी खाई, मुसल्ला बिछा के इबादत कर रहे थे, जालिम इब्ने ज़ियाद को पता चल गया कि मुस्लिम फुलां घर में ठहरे हुए, उसने 3,350 के लश्कर को भेजा कि मुस्लिम को गिरफ्तार करो। आधी रात गुजर गई, मुस्लिम मुसल्ले में बैठ के इबादत कर रहे, घोड़ों के टापों की आवाज आने लगी कि एक बड़ा लश्कर आ रहा, टापों की आवाज। मुस्लिम बहादुर अखिल का बेटा है, तलवार फेंक के उठा। ये मोमिना ने कहा आप तड़प के रोएंगे, ये मोमिना ने कहा कि आखा बाहर मत जाओ, लश्कर बहुत बड़ा है। जैसे ही कहा बाहर मत जाओ, मुस्लिम ने अजीब जवाब दिया, पलट के कहा कि ए मोमिना तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मुझे अपने घर में रख के रोटी दी, इबादत करने का मौका दिया, लेकिन अब इब्ने ज़ियाद को पता चल गया कि मैं तेरे घर में ठहरा हुआ हूँ, अगर मैं बाहर ना जाऊँ ये लश्कर अंदर आ जाएगा और तेरा पर्दा ज़ाया हो जाएगा। मैं हाथों को जोड़ के मुस्लिम को बोलूँ, मौला एक कनीस के पर्दे का इतना ख्याल, शाम गरीबा में ज़ैनब के सबसे ज़्यादा ज़रूरत। इसी तरह फुर्सत हो, इसी तरह फुर्सत हो, पीछे वालों को बोल रहा, पीछे वालों को बोल रहा, मजलिस में सूखी आंखों से नहीं जाना। मैं कहूं मौला शाम गरीबा में बीबी ज़ैनब के सर से चादर छू। अजीज और मुस्लिम बाहर आए, अखिल का बेटा है, खूब जंग की। इब्ने ज़ियाद ने और 3,000-4,000 के लश्कर को भेजा, जंग करते करते जनाब मुस्लिम को धोखे से पकड़ा गया, रस्सियों में जकड़कर इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। अब यहां पे एक अजीब वाकया है, आप सुन के तड़प तड़प के रोएंगे। एक शख्स करबला के वाकये के बाद मदीने मुनव्वरा आया चौथे इमाम के पास, और आके उसने सवालात की, आखिर में एक सवाल किया और ये कहा कि मौला मैं उस वक्त इब्ने ज़ियाद के दरबार में था जब आपके चचा मुस्लिम को पकड़ के लाया गया, जब लाया गया तो आपके मुस्लिम जब दरबार में एंटर हुए तो आपका सीना तना हुआ था, सर उठा हुआ था, इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे, मालूम हो रहा था कि एक शेर है जो बात कर रहा। उसके बाद ये कहता है कि मौला मैं उस वक्त भी कूफे में था इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब आप आए असीर होके और आपका सर झुका हुआ था। ये कहता है मौला इमाम तो सबसे ज्यादा बहादुर होता, बस ये सुनना था चौथे इमाम तड़प के रोने लगे, कहने लगे तूने इंसाफ नहीं किया, जब मेरा चचा आया वो अकेला था, मेरे साथ ज़ैनब थी, चादरें नहीं। इब्ने ज़ियाद से गुफ्तगू हुई, बस मैं आखिरी हिस्से पे आ गया। मुस्लिम की इब्ने ज़ियाद से गुफ्तगू हुई, जालिम ने हुक्म दिया कि मुस्लिम को लेके दारुल अमारा की बुलंदी पे लेके जाओ, जल्लाद लेके जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की बुलंदी पे पहुंचा। मुस्लिम ने कहा मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ने दे। नमाज पढ़ के मुस्लिम ने मक्के का रुख किया और कहा सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, आज जो हम नमाज के बाद सलाम पढ़ते इमाम हुसैन को, ये मुस्लिम की सुन्नत है। कहा सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, सलाम अलैका इब्न रसूल अल्लाह। मौला हुसैन रास्ते में एक जगह ठहरे हुए थे, हुसैन ने कहा अलैका सलाम अलैका सलाम। उसके फौरन बाद इमाम का जुमला कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पानी दो, पानी दो यार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फौरन जनाबे ज़ैनब ने सुना, सुन के कहा भैया ये क्यों, क्या हुआ? इमाम ने बीबी ज़ैनब को करीब बुलाया, करीब बुला के कूफे की जमीन की तरफ इशारा किया तो ज़ैनब ने दूर से देखा मुस्लिम के गले पे खंजर है,
بہن تڑپنے لگی کہ میرا بھائی ذبح ہو رہا. عزیزوں میں کہوں بی بی زینب آج آپ دور سے دیکھو کربلا میں تلے زینبیا اور حسین کا گلا حسین کے گلے پہ خنجر. بس ایک منٹ میں مجلس ختم کر رہا, ایک منٹ میں, بس ایک منٹ میں. وہیں پہ مولا حسین بھی ہے, بی بی زینب بھی ہے. امام حسین نے جناب زینب سے کہا کہ بہن رقیہ بنت مسلم کو لے کر آؤ, یہ جناب مسلم کی یتیم بچی تھی, 6-7 سال کا سن. بی بی زینب رقیہ کو لے کر آئی, حسین نے پہلو میں بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرا, کانوں میں گوشوارے پہنائے. ماتا جمع اہل بیت کے گھر کی بچی تھی, سمجھ گئی, کہنے لگی چچا ایسا سلوک کر رہے جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا. حسین نے کہا بیٹی تمہارے بابا مارے گئے لیکن حسین زندہ ہے. وہیں پہ سکینہ تھی, دیکھ رہی تھی کہ یتیم کے ساتھ کیا ہوتا, لیکن کربلا میں شام غریبا پہلا تماچا سکینہ کو پڑا, سکینہ پر یاد کرنے لگی. پروردگار میری بیوی کے مصائب کا واسطہ, ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرما. ہماری یہ مجلس بیوی زہرا مظلوم بیوی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. خیسر بھائی کے درجات کو بلند فرما. محبان پنجتن کی جو ٹرسٹیز ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. پروردگار ہماری عزاداری کو قبول فرما لے, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا, امام کی سلامتی اور بیمار کربلا کے صدقے میں سارے بیماروں کو صحت دے دے. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اربعین حسین کے لیے ہم کربلا مولا جائیں, امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ناصران امام میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور خیسر بھائی اور ان کے شوہر کے لیے. Thank you.